श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा से मो भजन पूजन मोरा प्राण धना से मोरा भरना से मोर जीवन जीवन निधि से मोर वंशा सिद्धि से मोर रस निधि से मोर वंशा सिद्धि से मोरा वेद रथ से व्रत से तपा से मोरा मंत्र जपा से मोर धर्म करम अनुकूल हवे विधि से पद होइबे सिद्धि अनुकूल हवे विधि से पद होइबे सिद्धि ने राखिबो ए दुई नयने ने राखिबो ए दुई नयने रूप माधुरी रसी प्राण कुबलया शशि प्रफुल्लिता होवे निसिधि मे दर्शन हई সরলা দেহি চিরদিনা তপিত জীবন চিরদিনা তপিত জীবন প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছয়া প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছয়া নরতম নয়ন শরণ নরতম নয়ন শরণ মঞ্জরী পদা সেই মোর সম্পদা সেই মো বদন পূজন
तो आज का 18वां अध्याय है। अध्याय का शीर्षक है भाव प्रेमी का चरित्र, इंग्लिश में दिया है कैरेक्टर ऑफ एक्सटैटिक लव। तो इस अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी भाव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और भाव भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। और यहां पर लिखा है भाव भक्ति का लक्षण है, चरित्र है चित मार्ष्ण्य, यानी कि हृदय बिल्कुल कोमल। और ऐसे कोमल हृदय में नाना प्रकार के भाव जागृत होते हैं, भावनाएं जागृत होती हैं, जैसे रुदन करना, कंपन, कंठ गदगद होना इत्यादि। लेकिन ये रोना धोना जो है वो कोई भी कर सकता है। आजकल तो बिकाऊ हैं सब, आप खरीद सकते हैं। किसी शोक सभा में अगर आपको रोने धोने के लिए बुलाना है कुछ लोगों को, तो पैसे देकर बुला सकते हैं आप। लेकिन वो भाव भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, वो भावुकता भी नहीं है, केवल नाटक है। और ऐसे फिल्म के नेता, अभिनेता, अभिनेत्री इत्यादि, इनको तो प्रशिक्षण मिलता है रोने का और हंसने का। जब चाहे रो सकते हैं, जब चाहे हंस सकते हैं। और ऐसे कई हम चलचित्र देख चुके हैं, जिसमें धार्मिक चलचित्र भी देख चुके हैं, जिसमें भगवत भक्ति का प्रदर्शन करता है कलाकार, नेता, अभिनेता, रोता है भगवान के सामने आकर। और देखने वालों को ऐसा लगता है कितनी भक्ति है इसके हृदय में। लोग भावुक होकर खुद भी आंसू बहाते हैं और उस नेता के, अभिनेता की आंखों को, आंखों में आंसू देखते हैं। तो इस तरह भावनाओं का आदान प्रदान होता है विकृत रूप में, विकृत परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जो भी हम आध्यात्मिक शक्ति देखते हैं मूल रूप में आध्यात्मिक जगत में, वो सारी शक्तियां विकृत रूप में भौतिक जगत में पाई जाती हैं। जैसे अंतरंगा शक्ति को तीन भागों में विभाजित किया गया है, संबिद, लादनी और संधिनी शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां जो हैं वो इस भौतिक जगत में विकृत रूप में दिखाई पड़ती हैं। जैसे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, भगवत धाम का प्रकट होना, तो ये संधिनी शक्ति के द्वारा होता है। अस्तित्व जिस कहते हैं आध्यात्मिक जगत का जो अस्तित्व है वो संधिनी शक्ति के कारण है, और विकृत रूप जिसका क्या है भौतिक जगत का जो अस्तित्व है वो संधिनी शक्ति का ही विकृत रूप है। वही संधिनी शक्ति जो है भौतिक जगत में नजर आती है। और अंतरंगा शक्ति जिससे लादनी शक्ति जिसमें कहते हैं लाद, आनंद मिलता है भक्तों को, आनंद मिलता है भगवान की प्रेमय सेवा करके, और ऐसे आनंद का विकृत रूप है संसारिक सुख, इंद्रियों का तर्पण करना, पुनः पुनः चरित चरणाना, खाना सोना, भोग त्याग का जीवन। तो ये विकृत रूप है, उस आध्यात्मिक आनंद का ही विकृत रूप है, लादनी शक्ति का ही विकृत रूप है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत में है इसी कारण से भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है, उन्हीं शक्तियों का ही विकृत रूप दिखाई पड़ता है भौतिक जगत में, क्योंकि ये शक्तियां मूल रूप में आध्यात्मिक जगत में है, भगवत सेवा में है, वही शक्तियां विकृत रूप में इस भौतिक जगत में दिखाई पड़ती हैं, और जीव उसी आनंद की तलाश में इस संसार में घूम रहा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हर जीव वास्तव में कृष्ण की तलाश में ही है, तो विकृत रूप से वो तलाश कर रहा है कृष्ण की, उस सुख की, उस आनंद की तलाश कर रहा है, लादनी शक्ति। तो सांसारिक सुख जिस तरह से गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के लिए सबसे उच्च कोटि का भाव, महाभाव प्रकट करती हैं गोपियां श्री कृष्ण के लिए, उसी का विकृत रूप हम देखते हैं इस भौतिक जगत में साधारण पुरुष और स्त्री के बीच में जो तथाकथित जो प्रेम होता है। और कुछ समय के लिए सुख मिलता है फिर बाद में दुख, पहले सुख फिर दुख, तो इस प्रकार उसी का ही विकृत रूप है। और भगवान कृष्ण की ही लीलाओं की नकल करना चाहते हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए, ऐसे निर्विशेषवादी मायावादी जो होते हैं, मायावादी कृष्णेर अपराधी, कृष्ण की लीलाओं को तो माया बता दिया लेकिन खुद भी माया में पड़े हैं और खुद भी लीला करना चाह रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात। कृष्ण की लीलाओं को माया बताते हैं, कृष्ण को माया बताते हैं और स्वयं भी माया के वशीभूत होकर स्वयं भी लीला करके दिखाना चाहते हैं, स्वयं को घोषित करके, भगवान घोषित करके। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुख है, सुख नहीं। तो संसार में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का भविष्य बिल्कुल दुखदायी होगा, नरकगामी होंगे ये लोग। तो ये लादनी शक्ति का एक विकृत रूप है, और संबित शक्ति जैसे जीव को भगवत ज्ञान होता है, भगवत तत्व का ज्ञान होता है, इस सृष्टि का भगवान से क्या संबंध है और हमारा संबंध क्या है भगवान से, ये संबित शक्ति के कारण होता है। और आध्यात्मिक जगत में जो नाना प्रकार के संबंध है भगवान के साथ, उस संबंध जो है स्थापित हो रहा है, उस संबंध का जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, वो संबित शक्ति के कारण है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन, श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना, ये संबित शक्ति है। हमारे गुरुदेव क्या है, संबित शक्ति और लादनी शक्ति के ही तो प्रतिनिधि है, एम्बॉडीमेंट है। तो गुरु की सेवा करने से क्या होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है और आनंद मिलता है। लेकिन हम लोग सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जड़ विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक जगत का ज्ञान, जड़ विद्या, माया और वैभव, ठाकुर भक्तिनोद कहते हैं, इस शरीर का ज्ञान, घर का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, देश का ज्ञान, समाज का ज्ञान और नाना प्रकार के विषय जो पाठशाला और विश्वविद्यालय में सिखाए जाते हैं नवयुवकों को, बच्चों को बचपन से ही भोग धर्म की शिक्षा दी जाती है, भागवत धर्म की नहीं। तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी नहीं लगते, ऐसे लोग पशु की तरह जीवन बिताते हैं, जड़ विद्या प्राप्त करके सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, सारी इंद्रियां उनकी अज्ञानता से भरी रहती हैं। तो समित शक्ति का ही वो विकृत रूप है। तो इसी प्रकार ये बताएं, ये हम ही बताना चाह रहे थे यहां पर कि जो भाव भक्ति का लक्षण प्रकट करते हैं भक्त, शुद्ध भक्त भगवान के, भाव भक्ति एक तरह से तो पूर्णतम अवस्था ही है, परफेक्शनल स्टेज है, ये साधना की अवस्था नहीं है, साधना की अवस्था हो गई समाप्त, भाव भक्ति। तो भाव भक्ति के स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो जो आत्मा का जो मूल भावना है कृष्ण के प्रति, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु गबन होय सर्वानादि चित्त करोय उदय, तो ये जो जीव का शाश्वत संबंध है भगवान से, प्रेम जागृत हो जाता है श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या होता है, ये सुषुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। लकड़ी में अग्नि है लेकिन मंत्रों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जब वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। आप जानते हैं बरगद का पेड़ कैसे बनता है, वो बीज कैसे अंकुरित होता है जिसमें इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, एक चिड़िया या पक्षी आकर बीट डाल देती है उसमें बीज में और उसी बीज से इतना पेड़ बड़ा पेड़ निकल आता है, भक्ति लता बीज। इसी तरह से भक्ति लता बीज दिया जाता है गुरुदेव के द्वारा और श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको जागृत करना होता है। कृष्ण प्रेम है लेकिन जगाने के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी हम भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते हैं, या संभव है। भाव भक्ति ही क्यों, वैदिक भक्ति भी प्रारंभ नहीं कर सकते, वैदिक साधन भक्ति भी शुरू नहीं कर सकते हैं, राग मार्ग में भी नहीं प्रवेश कर सकते हैं, रागानुगा साधन भजन में भी नहीं लग सकते हैं। और भाव भक्ति तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था है जो हमारी कल्पना से परे है, अभी केवल हमारे लिए भी क्या है, पुस्तक किताब का ज्ञान है, हम केवल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम उस स्तर पर है नहीं, इसलिए अध्याय समझ में नहीं आता क्योंकि हम उस स्तर में है नहीं। और लेकिन श्रील रूप गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा वर्णन किया है, श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं यहां पर श्रीमद् भागवतम से उद्धृत करते हुए कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने द्वितीय स्कंद में तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि कैसे ऐसे प्राकृत लोग जो होते हैं, साइड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो तथाकथित भाव भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उसे धन अर्जित करते हैं, कथा सुनाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं और बाद में जाके नशा करते हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी हम लोगों की सहायता करने के लिए आए हैं, श्री रूप गोस्वामी बड़े कृपालु हैं और वो जानते हैं कि भविष्य में ऐसे लोग आएंगे जैसे श्री भक्तिनोद ठाकुर ने बताया कि 13 प्रकार के अप संप्रदाय का वर्णन किया और कई भी हैं लेकिन 13 अप संप्रदायों का नाम दिया, 13 प्रमाणिक अप संप्रदायों का नाम दिया, आउल बाउल सखी बेखी चूड़ाधारी दारावेश इस तरह से, साइड जिया सखी बेखी गोरांग नागरी अटीबाड़ी फकीर फकीर बहुत होंगे ऐसे ऐसे 13 प्रकार के आप संप्रदाय हैं। कहते हैं महाप्रभु के अनुयायी हैं और हम रासलीला करेंगे शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे थे वो अटीबाड़ी संप्रदाय के थे बिशकिशन, है ना। तो भक्तिवेन ठाकुर ने उनकी पोल खोली, उनके अपने ही शास्त्र थे, लिखे हुए शास्त्र थे कि महाविष्णु प्रकट होने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, अंग्रेज सरकार को भगा देंगे। और भक्तिवेन ठाकुर से कहा कि आपको हम गवर्नर बनाएंगे उड़ीसा का, हम जानते हैं आप बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु मेरे भक्त थे, तुम चिंता मत करो केदारनाथ दत्त, मैं तुम्हें पूरे उड़ीसा का गवर्नर बनाऊंगा। लेकिन आप यहां जंगल में क्या कर रहे हैं, आपको तो जगन्नाथपुरी में होना चाहिए, जगन्नाथ जी तो वहां बैठे हैं पुरी में। बोलते वो जगन्नाथ वो तो लकड़ी का बना हुआ है, मैं हूं असली जगन्नाथ। बोला अच्छा ठीक है, फिर हम आपको ले चलते हैं। पकड़ के ले गए भक्तों ठाकुर बैलगाड़ी में बिठा के, और उनके जादू टोने से बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए उनकी सिद्धियों से। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के ऐसे योगी और नाना प्रकार के तथाकथित साहित्य लोग हैं जो भाव भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और बेचारे जो निर्दोष जनता है वो इनकी तथाकथित भावनाओं के चक्कर में फंस जाती है, और ऐसे गुरु ऐसे शिष्य दोनों ही नरक जाते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने इसलिए भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए, जिसका संक्षेप में हमने आपको वर्णन किया पिछली बार। अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट डिवोशन सर्विस 24 आवर्स अ डे, नित्यम भागवत सेवा। तो जिस तरह से हम देखते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी लगातार 7 दिन कथा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को भी वो अपनी स्थिति में लेकर आ गए। तो यहां पर देखिए क्या वर्णन किया गया है अव्यर्थ कालत्वम के बारे में। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है, वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है, और अपने शरीर को या तो अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है, इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। मतलब अव्यर्थ कालत्वम ऐसा लक्षण है जिसकी नकल करना भी चाहें तो लंबे समय तक नहीं कर सकते, पकड़ जाएंगे। तो ये जो रोने धोने वाले लोग हैं उनको पकड़ सकते हैं इस तरह देखकर कि कितने समय तक वो सेवा में लगे हैं। शांति परसिवेरेंस, क्या लिखा है, जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी शुद्ध नहीं होता तो वह संयमी तथा अध्यवसायी कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद् भागवत में वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है। वह अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने, अतः आप आशीर्वाद दें कि माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो। उस ब्राह्मण बालक का शाप मुझे लगा तो है तो लगता रहे, मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन के अंतिम घड़ी में विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करें, जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। तो देखिए परीक्षित महाराज की सहनशीलता देखिए, इसको कहते हैं शांति। इतना बड़ा कष्ट आने वाला है, मृत्यु के कितने निकट है, लेकिन बिल्कुल उनको भय नहीं है, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में बैठे हैं, गंगा जी के तट पर बैठे हैं, और उनका पूरा मन महामग्न चित्ता, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा मन तो पूरा मग्न है आपकी लीलाओं में, आपकी कथा में, इसलिए मुझे भयभीत, मैं भयभीत नहीं हूं, मुझे डर नहीं है, मैं तो इन मूर्खों और धूर्तों के लिए चिंतित हूं प्रेम के कारण। जहां तक मुझे, अब जहां तक मेरी बात है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट माई सेल्फ. लेकिन ये लोग क्या है, बहुत भयानक अवस्था होगी इन लोगों की. तो यहां पर यही बात बताई जा रही है, शांति का मतलब यह है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी पांडवों को कष्ट मिला, देखिए प्रहलाद महाराज को कष्ट मिला, भीष्म पितामह का देखिए, आप भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हैं, फिर भी देखिए कितने शांति से लेटे हो, चिल्ला नहीं रहे, रो नहीं रहे हो, बचाओ बचाओ ऐसे नहीं बोल रहे हो, शांति से लेटे हैं और भगवान का इंतजार कर रहे हैं. श्रील प्रभुपाद सबसे बड़े उदाहरण है हमारे लिए वर्तमान समय में, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे आखिरी 2 महीने बहुत बीमार थे, आपने फाइनल लेसन में देखा भी होगा वीडियो में, तो आखिरी जो 2 महीना था प्रभुपाद का बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था. और डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा इनका शरीर तो इतना तप रहा है, इनके शरीर में इतनी गर्मी है, तप रहा है शरीर प्रभुपाद का, लेकिन प्रभुपाद के चेहरे में थोड़ी सी भी शिकन नहीं है और प्रभुपाद थोड़ा सा भी कष्ट प्रकट नहीं कर रहे हैं, चेहरे से पता ही नहीं चल रहा है. और प्रभुपाद फिर भी उस अवस्था में भी लेटे लेटे श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंध है उसका अनुवाद कर रहे हैं, जिसको कहते हैं शांति. हम तो कहानियां सुनते हैं पुरानी पुरानी, ये है अब जीता जागता उदाहरण. वर्तमान समय में भी श्रील प्रभुपाद जी के अग्रगण्य शिष्य कितनी कठिन परिस्थिति में रहे. अभी कल आप लोगों ने सेमिनार सुना सॉल्टेड ब्रेड, उसको कहते हैं शांति, परसिवरेंस. कितना उनको कष्ट दिया गया, ड्रग्स दिए गए, इंजेक्शन दिया गया, और पांव में मारा गया, सर में मारा गया, आंखों में मारा गया, कितना उनको दुख दिया, कितना कष्ट दिया गया, कितना टॉर्चर किया उनको. उसके बाद भी उन्होंने हरिनाम लेना नहीं छोड़ा. जैसे हरिदास ठाकुर को जब मारा 22 बाजारों में पीटा गया तो उन्होंने क्या बोला, मेरे शरीर का खंड खंड कर दो लेकिन मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा. हरिदास ठाकुर का इतना प्रेम था नाम से, आप शरीर को खंड खंड भी कर दो लेकिन नाम लेना बंद नहीं हो सकता है. तो ये महान जो भक्त हैं वो हमेशा शांत इसलिए रहते हैं. अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शुक्ल अशांत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं. सब अशांत हैं सब, क्योंकि सब कामी है, भुक्ति कामी सिद्धि कामी मुक्ति कामी, भुक्ति कामी मुक्ति कामी सिद्धि कामी, ये सब कामी है, कुछ ना कुछ चाहते हैं. भुक्ति यानी कि इंद्रिय तर्पण करना चाहता है, सुख चाहता है, मुक्ति कामी मोक्ष चाहता है, सिद्धि कामी सिद्धि चाहता है. लेकिन भक्त क्यों शांत है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कोई कामना ही नहीं है उसकी, वो तो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है इसलिए शांत है. यह है फॉर्मूला शांति का. बाकी आप कितनी भी योजना बनाते रहे संसार में कोई फायदा नहीं है, आखिर में दुख ही भोगेंगे. जो आज सुख भोग रहा है कल दुख भोगेगा. तो इसलिए आगे ये बता रहे शांति के बारे में बता रहे हैं आप. परीक्षित महाराज देखिए कितने कष्ट कठिनाई में थे, वो मृत्यु उनके निकट थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कथा सुनना बंद नहीं किया. वो तो ये कहने लगे भूख प्यास के द्वारा जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं सता रहा मुझे, क्योंकि आप अपने मुख से जो कृष्ण कथामृत का पान करा रहे हैं उससे प्रतिपद हर कदम में मेरा आनंद बढ़ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है. आप सुनाते जाइए बस, ये मत पूछिए कि प्यास लगी है भूख लगी है आपको. मान लीजिए हमें पता चल जाए कि अगले हफ्ते हमारी मृत्यु है तो क्या हम श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, क्या हम लोग 16 माला का जप कर पाएंगे कम से कम, सोचने वाली बात. या हम जाएंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज. सारे भक्ति के लक्षण प्रकट हो जाएंगे. इसलिए ये जो गुण है यहां जो बताया गया है इसकी नकल नहीं की जा सकती है. शांति. हाँ जी क्या बोल रहे थे आप, शांति शांति हाँ, यहाँ पे परसिवरेंस का मतलब टॉलरेंस भी होता है। हाँ, तो जो सहनशील है वही तो शांत होगा, और कौन होगा शांत? का मतलब है रिमेनिंग टॉलरेंट एंड पेशेंट, धैर्य रखना और सहनशील होना। उत्साह निश्चा धैर्यात, श्री गोस्वामी ने बोला है, धैर्यात, सहनशील होना, धैर्य रखना। विरक्ति, डिटैचमेंट, वैराग, बड़ा अच्छा बताया वैराग के बारे में। क्या बताया सुनिए ध्यान से। इंद्रिया सदैव इंद्रिय भोग चाहती हैं, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं, विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी हमारी, उतना ही वैराग बढ़ेगा और उतना ही ज्ञान भी बढ़ेगा। तो भरत महाराज के बारे में क्या बताया जाता है? श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य मल समझकर त्याग दिया। मल रसम त्यजंती, सुअर तो मल को खाता है लेकिन मनुष्य थोड़ा खाएगा, क्योंकि मनुष्य के लिए जो आनंद है, आनंद का जो स्तर है मनुष्य के लिए बहुत ऊंचा है। इसी तरह से संसार का सुख भी है। जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसके लिए संसार बिल्कुल मल के समान हो जाता है, इसलिए वो त्याग देता है। महाराज भरत बैराग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग वस्तुएं प्राप्त थीं, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका अर्थ यह है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग नहीं कहते। यानी कि जो एल्यूरमेंट्स हैं और अट्रैक्शंस हैं उससे दूर रहना अपने आप में वैराग नहीं है। प्रारंभ में निश्चित रूप से यह आवश्यक है, दूर रहना अच्छा है प्रारंभ में। प्रारंभ में ऐसा नहीं कि हम लोग टेस्ट करते रहे अपने आप को, आई वॉन्ट टू टेस्ट, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, मैं जाकर देखना चाहता हूं, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूं। तो नो क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट, मक्खन तो पिघलेगा ही अग्नि के सामने, क्या एक्सपेरिमेंट करना है उसमें? एक्सपेरिमेंट करते हैं कभी? आपको पता है कि मक्खन पिघलेगा अग्नि के सामने, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं आप, है ना? लेकिन जो दूसरे श्रेणी के लोग हैं जिनकी बुद्धि दूसरे श्रेणी की है, वो करके देखना चाहते हैं। मैं चोरी कर लूं फिर देखूंगा पकड़ा जाता हूं कि नहीं, और पकड़ा जाता है तो फिर बोलता है ठीक है हाँ अब नहीं करूंगा। लेकिन पहली श्रेणी का व्यक्ति कौन है? जो सुनने मात्र से ही चोरी नहीं करता, वह है श्रवण करते ही परीक्षित महाराज की तरह, सुनने मात्र से ही भगवत धाम चले गए। बताओ कितने उच्च कोटि के भक्त परीक्षित महाराज। और तीसरे श्रेणी के कौन है? सुनते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर भी चोरी करते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आती, बार बार जाते हैं 12 नंबर में चोरी करने। भक्त लोग परेशान रहते हैं, कभी कहता है कोई मेरा ये चोरी हो गया, कभी वो चोरी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां जो बात बताई जा रही है कि एक तो होता है कि प्रारंभिक अवस्था में इन आकर्षणों से दूर रहना, लेकिन वास्तविक वैराग क्या है कि ये आकर्षण सामने हैं, एल्यूरमेंट्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, उसके बावजूद भी आप विरक्त, ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। ये भाव भक्ति का लक्षण है विरक्ति, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे जैसे वैष्णव लोग, श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्य और कई ऐसे भक्त विदेशों में प्रचार कर रहे हैं जहां माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। भार कदम रखते ही माया का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि चारों खाने चित, आप आंखें खोल के नहीं चल सकते, कान खोल के नहीं सुन सकते, आप कान बंद रखने पड़ेंगे, आंखें बंद रखनी पड़ेंगी, मुंह भी बंद रखना पड़ेगा। जो गए विदेश वो जानते हैं, हमारे अभिनव प्रभु होके आए थे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, और कई और भी आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से काफी भक्त आ रहे हैं, और जर्मनी भी गए हैं कुछ लोग। ऐसे देशों में जाकर देखिए आप कितनी बुरी हालत है वहां पर, कितना आकर्षण है, बहुत मुश्किल है गेरुए वस्त्र में रहना, बहुत मुश्किल है। हाँ? आप बुद्धिमान है, सावधान रहिए, इसलिए हमारा देश ही पाश्चात्य देश हो गया, इसको तारना भी बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, उनका प्रचार इस देश में ज्यादा अब लागू होगा। बाहर के लोग जैसे वो बता रहे थे हरीश्वरी प्रभु, दो प्रकार के कौवे होते हैं, एक बूढ़ा और एक जवान। ठीक है, बूढ़ा कौवा बैठ जाता है कूड़ा खाने के लिए थोड़ा बहुत जहां भी मिल जाए, लेकिन जो यंग क्रो होते हैं वो जगह जगह भटकते हैं कूड़ा खाने के लिए। तो ये हमारा देश है जहां पर बहुत सारे यंग क्रोस है। हाँ। जिन्होंने अभी भौतिक आकर्षण का दर्शन नहीं किया था इतने सालों में, अब कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो काफी सारे अट्रैक्शंस हैं इंटरनेट के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, कई मूवीज देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, कितने सारे अट्रैक्शन हैं, क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये सब आकर्षण अगर आपके सामने हैं फिर भी आप आकर्षित नहीं होते हैं, तब हैं आप असली वैरागी। इसका मतलब आपके हृदय में कृष्ण बस चुके हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत लोग होते हैं हमेशा उस श्याम सुंदर रूप का दर्शन निरंतर रूप से करते हैं, विलोकयन्ति, तो फिर क्यों संसार अच्छा लगेगा उनको, स्वतः ही विरक्ति आ जाती है। इस प्रकार की विरक्ति जागृत करनी हमें। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने का वैराग नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो विरक्त कहलाता है। निस्संदेह नव दीक्षित भक्त को प्रारंभ से अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों में के रहते हुए भी लेश मात्र आकर्षण नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यह है। कसौटी मतलब अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। तो उस स्टेटस में अगर पहुंचना है, सन्यास के स्टेटस में पहुंचना है, इसका मतलब वन हैज टू बी फुली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सबको सन्यासी बनना है, कोई भी आश्रम में हो वैरागी बनना पड़ेगा आपको। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। तो वैराग प्रधान तभी हो सकता है जब हृदय में आपके लिए प्रेम हो, कृष्ण के लिए जब प्रेम होगा, जब हृदय बिल्कुल खोखला होगा, शुष्क होगा मन। भक्ति देवी जहां वास नहीं करती जिनके हृदय में, तो कहां से आएगा वैराग। बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसलिए निर्अभिमानता यानी कि मान शून्यता। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता तो वह निर्अभिमानी कहलाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजा आदिराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया कि वह साधु हो गए और अपने राजनीतिक शत्रुओं तथा अछूतों तक के घर भिक्षा मांगने गए, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्तिनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त। जब वो मंदिर बना रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पता लगाया, उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू करवाना चाह रहे थे, तो क्या करा उन्होंने भक्तिनोद ठाकुर ने, वो कलकत्ता गए और घर घर जाके वो एक रुपया मांग रहे थे, एक एक रुपया वो ले रहे थे, सबसे दान ले रहे थे घर घर जाकर, और अमृत बाजार पत्रिका नाम के न्यूज़पेपर में आया कि केदारनाथ दत्त जो कि चीफ मजिस्ट्रेट रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं, एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं महाप्रभु के लिए मंदिर बनाने के लिए मायापुर में। इसको कहते हैं मान शून्यता। भक्तों ठाकुर के जीवन चरित्र से सीखना चाहिए। भक्तों ठाकुर का जीवन चरित्र जो है बहुत ही ज्वलंत है ना, कि जीवन चरित्र के बारे में सुनने से ही हम लोग के अंदर पवित्रता आ जाती है। तो भक्तों ठाकुर क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, इसलिए वो घर घर जा रहे थे और दान मांग रहे थे। जैसे कि यहां पर महाराज भगीरथ के बारे में बताया जा रहा है, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहां तक कि लगभग 200 या इससे कम वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू, लाला बाबू सुना है, उनका एक मंदिर भी बनाया था वृंदावन में। वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे, वह भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे। यहां तक कि अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वह कहे भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है। यह स्वाभाविक है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा है तो कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है, इसलिए मान अपमान की चिंता ना करते हुए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि है ना। तो हम सबके लिए है ये, हम सब सीख रहे हैं मान शून्यता। यश कमाने की इच्छा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा बहुत भयानक बीमारी है। यश कमाने का सुख बहुत ही गहरा होता है। हो सकता है आपका आकर्षण धन से ना हो, पुरुष से ना हो, स्त्री से ना हो, परिवार से ना हो, समाज से ना हो, देश से ना हो, कुछ भी ना हो आकर्षण, लेकिन ये जो आकर्षण है बहुत ही सूक्ष्म है, यश कमाने की इच्छा, क्योंकि ये सबसे थिक होता है और सबसे सूक्ष्मतम होता है, सबसे सटल लेवल पर होता है जो कि ईगो से कनेक्टेड होता है हमारे। तो इस लेयर को पार करना बहुत ही टफ होता है, लोभ के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा हमें। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की त्वयि अहितु की अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्धति। बिना किसी हेतु के और बिना किसी बाधा के, कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, बिना मान की इच्छा रखते हुए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन कार्य है। खासकर जब भक्त गोष्ठानंदी बनने लगते हैं या प्रचारक बनते हैं तो स्वाभाविक है कि यश की प्राप्ति होती है, लेकिन उस यश को अगर हम स्वयं स्वीकार कर लेंगे तो यश के जाल में इतना बुरी तरह से फंसेंगे कि निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। फिर यश कमाए बगैर हमारी रात की नींद पूरी नहीं होगी, रात को नींद नहीं आएगी, बड़ी भयानक बीमारी है ये, इस सब बीमारी से बचना होगा। आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे काउंसलर हैं, आप फलाना ढकाना है जो भी है, आपने सब कुछ सिखाया हमें, हम आपके पूरी तरह से शरणागत हैं। अगर आपने सुख को अपना लिया श्रवण करके, कर्ण रंध्र से प्रवेश कर गया आपके मन में, तो समझ लीजिए आगे भविष्य बड़ा अंधकार का है, भविष्य अंधकार में बीतेगा। बोलते वाह ऐसे होने चाहिए काउंसलर्स, ऐसे होने चाहिए हमारे अनुयायी, ऐसे होने चाहिए भक्त, तो उस दिन भूख भी नहीं लगेगी, निद्रा भी नहीं आएगी, यश ही इतना कमा लिया उसी से पेट भर गया, वाह 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 क्या बात। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए, वैद्य जी के पास, तो बता रहे थे एक बहुत बड़े संत आए थे हरिद्वार से ऋषिकेश से, पेट की समस्या थी उनको, तो वो रात के 12 बजे तक कथा करते थे। तो वो कहते हैं कि पेट की समस्या है, बोलते हैं हाँ जी महात्मा जी आप कितने बजे सोते हैं रात को, तो रात को सोते सोते 11-12 बज जाते हैं। बोलते हैं आपको तो आपके शिष्यों की जो तालियां हैं ना, उन तालियों ने मार दिया आपको। मतलब वैद्य जी ने कहा उस महात्मा को, तो इन तालियों से जरा बचिए और समय पर विश्राम करिए, पेट अपने आप ठीक हो जाए। हाँ, इसको उत्साहमयी भक्त कहते हैं। अनर्थ विश्वनाथ चक्री ठाकुर, शीला विश्वनाथ चक्री ठाकुर हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े सर्जन हैं, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे बड़ा कोई सर्जन हुआ ही नहीं आज तक। हमारे संप्रदाय के रक्षक संरक्षक, तो उन्होंने बहुत ऑपरेशन किए हैं और बहुत सूक्ष्मतम लेवल पर गए हैं और सारी हमारी अनर्थ बाहर निकाल के दिखा दी हमको। तो बताते हैं उत्साह में ही पफ्ड अप विद एंथुसियाज्म, क्योंकि लोग तारीफ कर रहे हैं इसलिए हमारे अंदर उत्साह है। जैसे लोग तारीफ करना बंद कर देंगे उत्साह अपने आप कम हो जाएगा। बृहद आशा, आशा बंद, यह दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा अवश्य होगी, संस्कृत भाषा में आश बंद कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है कि यह सोचते रहना कि चूंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूं, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। मतलब नम्रता का अर्थ यह नहीं है कि आश बंद ना हो, डिटर्मिनेशन ना हो, एंथुजियाज्म ना हो, ये भक्ति में हो सकता है कि ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों साथ साथ, जो भक्त है उनके साथ दोनों गुण होने चाहिए, नम्रता भी और कॉन्फिडेंस भी, उत्साह और निश्चय और धैर्य। तो ये जो निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, या फिर ह्यूमिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, वो साथ साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, ना योग्यता है, ना ज्ञान है, मैं तो वृद्ध हूं। और प्रभुपाद को दिल का दौरा भी पड़ा जहाज में, लेकिन प्रभुपाद ने कहा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हरि नाम में, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे गुरु ने जो आज्ञा दी है उस पर मुझे पूरा विश्वास। तो प्रभुपाद इस प्रकार आश बंद थे, है ना, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था, आशा बंद, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था, होप अगेंस्ट होप, कि हां इतनी कठिनाई मैं सहन कर रहा हूं, लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। इतनी उम्र में भी देखिए प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, सोच भी नहीं सकता कोई। प्रभुपाद लगातार 40 साल स्ट्रगल कर रहे हैं भारतवर्ष में और बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल पा रहा जैसे कि उनके गुरु महाराज चाहते थे, उसके बावजूद भी प्रभुपाद 70 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं होप अगेंस्ट होप। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए प्रभुपाद के लाइफ, प्रभुपाद लीलामृत जो है जिसे नहीं पढ़ा है वो शायद नहीं समझ पाएगा कि इस्कॉन कैसे बना। जो आज के समय में अगर इस्कॉन देख रहे हैं जहां बैठे हैं, ये सोचे यही इस्कॉन है, तो फिर हम ठीक तरह से संस्था को नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद लीलामृत सब भक्तों को पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्रभुपाद ने संघर्ष करके ये संस्था बनाई है, तब पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या है। ये भाव नहीं, आटे दाल का भाव। तो प्रभुपाद का आप देखिए डिटर्मिनेशन देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए कितना है। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना इस आशावन संबंधी उदाहरण को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वह कहते हैं मुझे ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझे वह भक्ति योग भी नहीं है, मुझमें वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है। जहां तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हुआ हूं। अतएव हे गोपीजन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूं मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूं। भाव यह है कि आश बंद शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वह किसी ना किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है देखिए श्री रूप गोस्वामी ने। जैसे वो भक्त जब जेल में थे, उनको टॉर्चर किया गया, मासूम भक्त बेचारे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, और आखिरी समय भी क्या किया उस भक्त ने, वो भक्त का नाम क्या बताया था, सच्ची श्रुता प्रभु की जय हो। तो उन्होंने क्या किया, आखिरी समय में टूथपेस्ट निकाल के उससे तिलक लगाया उन्होंने, और क्या हरिनाम भी लिया, बेडशीट की धोती बनाई और ठंडे पानी से स्नान किया, हेड शेव भी किया, शिखा भी रखी, और ब्रेड से बीड्स बनाए, और हरिनाम भी लिया, ऑफर भी की माला, माला भी अर्पित किया, और ऐसा हरिनाम लेते उन्होंने शरीर छोड़ा और धाम चले गए। जय हो। तो आज के समय में ये हो रही है घटना, ये प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य, तो ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ खत्म हो गया, अब हरि नाम उतनी शक्ति नहीं रही, है ना, ये सब पुरानी बातें हैं, कौन जानता है 500 साल पहले क्या हुआ था। देखिए कैसे भक्तों ने कष्ट उठाया रशिया में, तो ऐसे भक्तों को क्या महाप्रभु अपने पास नहीं बुलाएंगे, क्या नित्यानंद प्रभु शरण नहीं देंगे जो उनके लिए इतना कष्ट उठाए, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की, कष्ट उठाया, आज उसी देश में इतना प्रचार हो रहा है, इतने भक्त बन रहे हैं, उस तपस्या का फल है, हमारी तपस्या का फल नहीं है। आज भी जब भक्त होते हैं विदेशों में क्या करते हैं, रशिया में -30 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते, अगर आप नाक थोड़ा सा भी दिखा देंगे ना बाहर तो उसी समय जम जाएगा, अगर आप थूकते हैं ना तो जब तक जमीन पे पहुंचता है बर्फ बन जाता है, इतनी ठंड होती है वहां, और उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने मूवी बनाई है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, कभी आप देखना, आप सीडी भी दिया था अभी मदन मोहन प्रभु ने। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु को खुश कर रहे हैं, और क्या होता है भक्ति का लक्षण, कितना कष्ट उठा रहे हैं देखिए वो। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए श्रीमद् भागवत में 4th canto में एक जगह परपोर्ट में, द लॉर्ड वॉन्ट्स टू सी हाउ मच यू आर पेन्स टेकिंग इन डिवोशन सर्विस, कि कितना हम कष्ट उठा रहे हैं भगवत सेवा के लिए। जैसे हमारे भक्त लोग जाते हैं रोज, हमने देखा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे मसुंदर प्रभु, उनके सारे जितने भी संगी हैं, है ना, पाँव में जो है गर्म हवा चल रही है क्योंकि गाड़ियों से गर्म धुआं निकलता है, उनके पाँव में लगता है कि मुंह में जाता है, और कार्बन जा रहा है अंदर, और लोग भी गालियां दे रहे हैं, गर्मी भी पड़ रही है, और ऐसे में भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं कर रहे, रोड कर रहे हैं, है ना। तो ये कि कष्ट उठाना, तो ये कष्ट उठा रहे हैं आज, इनका इनको पूरा लाभ मिलेगा, इनका मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तपोद्यमम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। आज इस तपस्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है इनके नासिका से, कल क्या होगा जब देह त्यागेंगे तो कृष्ण के चरण कमलों का जो गंध है इनकी नासिका से प्रवेश करेगा। ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है तालियों की गड़गड़ाहट के लिए, ये वास्तविकता है, सच में। इसलिए हो सकता है कि हम भक्त लोग भाव भक्ति के स्तर पर ना हो, लेकिन इस कौन में श्रील प्रभुपाद की इतनी अपार कृपा है, श्रील प्रभुपाद ऐसे विशेष परिकर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, कोई किसी भी स्तर में क्यों ना हो भक्ति के, अगर उसने समर्पण भावना दिख प्रकट की है, गुरु की सेवा की है, पूरी तरह से शरणागत है, तो फिर अपने आप ही उसका प्रोग्रेस हो जाता है. ही गेट्स एलिवेटेड वेरी क्विकली. एडवांसमेंट बहुत तेजी से होता है. तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, श्रीमद भागवत में लिखा है. तीव्र तीव्र भक्ति करनी है, तीव्र भक्ति, नॉट स्लो भक्ति. जितना हम शरणागत होंगे धीरे धीरे, उतनी ही धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी हमारी. ये यथा नाम प्रबद्धन्ते ताम सते बजामि हम. मतलब जो आप सरेंडर का लेवल होगा भगवान कह रहे हैं कि तो उतना ही मैं आपका भजन करूंगा. जितना आप भजन करोगे मेरा, मैं उतना भजन करूंगा आपका. बजामि हम. तो इसलिए तपस्या का मतलब है कि जानबूझकर कष्ट उठाना, वॉलंटरली अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डालना. ऑफकोर्स गुरु की आज्ञा अनुसार, वैष्णव की आज्ञा के अनुसार. ये नहीं कि छलांग मार रहे हैं ऊपर से बिल्डिंग से कि मैं कष्ट उठा रहा हूं. नॉट लाइक दैट. प्रैक्टिकल. जो जो हमारी सेवा है उस सेवा में कष्ट उठाना, जो सेवा दी है गुरु ने उस सेवा में कष्ट उठाना. शरीर में पीड़ा होगी, बीमारियां लगेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी सेवा बंद नहीं करनी. तत्तेनुकंपान सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम तद्वाग वपुर भी हृदयम नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भाक. ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो है मुक्ति का अधिकारी, वो धाम जाने का अधिकारी बन जाता है जो किसी भी परिस्थिति में भगवत भक्ति नहीं त्यागता है, सेवा नहीं त्यागता है, निरंतर लगा रहता है. जीवन के अंत काल तक निश्चित रूप से वो धाम जाएगा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसको ले जाएंगे. ये है आशा बंध. वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता समुत्कंठा. जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है. इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता, कंप्लीट ईगरनेस. वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है. हर वस्तु का एक मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना होता है. लौल्यम अपि एकलम मूल्यम. वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है. इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन भीलमंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण करनामृत में करते हुए कहते हैं. सुनिए क्या कहते हैं भीलमंगल ठाकुर. तो भीलमंगल ठाकुर जो है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कृष्ण करनामृत. कृष्ण करनामृत का मतलब जानते क्या है? कृष्ण के कर्णों के लिए अमृत के समान है. कृष्ण जब सुनते हैं भक्त का गुणगान सुनते हैं तो उनको अमृत समान लगता है. कृष्ण करनामृत. मैं वृंदावन में के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्वास को मोहित करने वाले हैं, जिसके नेत्र श्याम बोहों से बद और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं. अतः इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, उसके नेत्र सदैव गीले, उसके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले जैसे रहते हैं तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है. मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूं. आप लोग चाहते हैं उत्सुकता से दर्शन करना? आप में से कितने भक्त चाहते हैं दर्शन करना कृष्ण का? कुछ लोग आधा हाथ खड़ा कर रहे हैं, थक गए शायद इसलिए. नहीं, उत्कंठा का मतलब होता है गर्दन नीचे करके नहीं, उत्कंठा का मतलब कंठ ऊपर होना चाहिए. जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, कई साल से कोई आया नहीं, आपके कोई रिश्तेदार थे निकट संबंधी और कई सालों के बाद वो आ रहे हैं, तो उत्कंठा नहीं होगी, आपका कंठ ऊपर नहीं जाएगा. आप बार बार नहीं देखेंगे तो माता यशोदा भी इंतजार करती हैं, वो देखते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. गौ चराने गया था अभी तक आया नहीं, गोधुली की बेला है, आने ही वाला होगा. तो उत्कंठा, माता यशोदा ऐसे देखती रहती कंठ ऊपर करके, गोपियां भी, उनके सखा भी, कई सखा नहीं गए जो, तो उसको उत्कंठा कहते, उत्कंठा। तो ये उत्कंठा होनी चाहिए हमारे अंदर, भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं श्री राधा पार्षार्थी का। वैसे भी हमारे जो मंदिर है, खासकर जो आश्रम नीचे रहते हैं, उनके लिए तो हमेशा उत्कंठा होनी चाहिए। राधा पार्षार्थी ऊपर है ना, हमारे श्री राधा पार्षार्थी पहाड़ी में ऊपर विराजमान है, ताकि हमारे मन में सदैव उत्कंठा बनी रहे, हम हमेशा ऊपर देखते रहे। वो रे राधा पार्षार्थी, चलो चलो चलो। जैसे गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी बैठे थे, गोपाल जी को माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया, तो सब वहां पर जितने ब्रजवासी थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गिरिराज जी में चढ़ने से पहले, सब उत्कंठित थे, कंठ को ऊपर उठाकर देख रहे थे। वो देखो गोपाल जी उधर उधर है, उधर है, हमें उधर जाना है। उसको कहते हैं उत्कंठा। और बड़ी तेजी से लोग भागे जा रहे हैं। महाप्रभु जब चतक पर्वत को देखे तो बड़ी तेजी से भागे, उत्कंठा। गिरिराज समझ गया, तो गिरिराज ही समझ लिया उन्होंने। तो इस प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए। प्रभुपाद को हम हमेशा उत्कंठित देखते थे। प्रभुपाद को देखा आपने, प्रभुपाद का फोटो? प्रभुपाद हमेशा उत्कंठित होते थे। नहीं, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप हमेशा ऊपर देखते हैं, इसका क्या कारण है? प्रभुपाद ने कहा, आवर फिलॉसफी इज द हाईएस्ट। फिर प्रभुपाद ने कहा, बट बेटर देन द फिलॉसफी इज प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। इसलिए मैं ऊपर देखता हूं। सुपर कॉन्फिडेंस प्रभुपाद का। एंड प्रभुपाद ने फिर ये बोला, नोबडी कैन डिफीट अस। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल होता है उत्तम वैष्णव, उत्तम अधिकारी महाभागवत में, कि दे आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे ही वास्तव में जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो प्रचार कर पाते हैं, वो होते हैं असली प्रचारक। तो यहां पर ये बताया गया उत्सुकता के बारे में। और भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति, उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राधारानी के नाम कीर्तन से संबंध एक अन्य कथन मिलता है। राधारानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। राधारानी बार बार क्या कर रही है? कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही है उत्सुकता से, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में अनुरक्ति। अभी हाल ही में नहीं, आने वाले समय में जन्माष्टमी के बाद हम लोग बना रहे विश्व हरिनाम संकीर्तन दिवस। अब हम इसके बारे में बात करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से प्रचार करना होगा इसके बारे में। तो ये 17 सितंबर को बना रहे हैं, वैसे तो कई जगह पर। प्रभुपाद इसी दिन बॉस्टन में प्रवेश किए थे, अमेरिका में पहुंचे थे प्रभुपाद, और उनके पहुंचने से क्या हुआ, हरिनाम शुरू हो गया। प्रभुपाद की वजह से पूरे विश्वभर में लोग हरिनाम ले रहे हैं। तो ये वर्ल्ड होली नेम डे बनाया जाएगा हर साल। इस साल उन्होंने 17 सितंबर का डेट फिक्स किया है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग शायद 17 सितंबर को ना करें, अभी डिसीजन नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकता है उसके अगले हफ्ते करें या 22 तारीख को करें। कुछ लोग 22 तारीख को कह रहे हैं, 22 तारीख को करें, संडे के दिन करें। और इसके लिए हम लोग कमेटी भी बनाना चाहते हैं दिल्ली NCR के लिए, ताकि 2,500 भक्त कम से कम हो और हरिनाम संकीर्तन में भाग ले सब। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा संकीर्तन करें, ऐसा संकीर्तन करें कि सब लोग घर छोड़ के आ जाएं, सब बाहर दुकानें छोड़कर आ जाएं, सब सड़क पे आ जाएं। ऐसा संकीर्तन हो, ऐसा कोलाहल हो जाए चारों तरफ, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में नृत्य किया, कीर्तन किया असंख्य भक्तों के साथ, ऐसा लग रहा था पूरे ब्रह्मांड को भेद के जा रहा था हरिनाम। ऐसा कीर्तन होना चाहिए कि ऐसा कीर्तन देखने के लिए देवी देवता भी आ जाए, वो भी अपनी सेना लेकर आ जाए। तो यज्ञ बहुत आवश्यक है, नहीं सोचो इस देश का क्या होगा, अगर इस देश में यज्ञ नहीं हुआ तो कहां यज्ञ होगा बताइए। इसलिए संकीर्तन यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, और सार जो उद्देश्य बताया श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के, उसमें ये उद्देश्य भी है, नाम संकीर्तन करना, कंग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो आप भाग लेंगे इसमें शिवान। तो यहां भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति, तो चैतन्य भागवत और कई प्रमाणिक शास्त्रों में बताया गया है कि नाम संकीर्तन जो है वो 100 गुना ज्यादा फल देता है हमारे पर्सनल चैंटिंग से। ये पिछले बार पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अनुरक्ति होती है ऐसे भाव भक्तों में, जो भाव भक्ति के स्तर पर है वो सदैव कीर्तन करना चाहते हैं, नाम गाने सदा रुचि। यहां पर ये लिखा है नाम गाने सदा रुचि, कॉन्स्टेंट अट्रैक्शन टू चैंटिंग हरे कृष्ण, हमेशा हरे नाम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो भक्तिनो ठाकुर का जो वो ग्रंथ है भक्ति विनोद वाणी वैभव, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब क्या है कॉन्स्टेंट चैंटिंग। उन्होंने बताया कि रात को जो आराम करते हैं शौच क्रिया वगैरह स्नान इत्यादि, उसके अलावा जब भी समय मिलता है वो भक्त हरि नाम लेता रहता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं यहां पर कि रात को भी वो सो नहीं रहा है और चैंटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र बड़े प्रैक्टिकल है, लेकिन वास्तव में जो भाव भक्ति के स्तर पर है वो हमेशा कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहते हैं, क्योंकि नाम उनकी रुचि होती है, नाम गाने सदा रुचि, सदा रुचि। जहां उनको मौका मिला नहीं उनका हाथ उसी समय तत्काल बीट बैग में चला जाता है, लेकिन प्राकृत अवस्था में क्या होता है जहां मौका मिला बीट बैग से हाथ निकाल देते हैं जहां मौका मिले, कि जहां पता चले कि मेरी संख्या पूरी हो रही है हाथ निकल जाता है माला से, विरक्ति आ जाती है जल्दी से उसी समय बीट बैग से। ऐसा लगता है बहुत बड़ा छुटकारा मिला, लेकिन कहां फंस गए थे हम। दुर्दैव में दृश्यम यह हाजिरी नानुरागा, तो ये अनुरक्ति प्राप्त होनी चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, गुणाख्यान करने की उत्सुकता, कृष्ण करनामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है, मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो कृष्ण के गुणों के बारे में क्या कहना, अभी एक चैप्टर ही आएगा आगे चलकर, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा जो श्री रूप गोस्वामी ने दिया है, तो उसमें हम लोग विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि कृष्ण के गुणों के बारे में जानकारी होगी तो गुणों से हम लोग पहचानेंगे। किसी के गुण अगर जानते हैं तो और भी ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है। अच्छे गुण होते हैं जब दिव्य गुण, खासकर कृष्ण में जो है ना आनंद अचिंत्य गुण स्वरूपम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो ऐसे गुणों की चर्चा की है श्रील रूप गोस्वामी ने, ऐसे गुणों का निरंतर गुणगान करते हैं। कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण, रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में वृंदावन के विषय में कहा गया है, इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शक्टासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे भवंदन की ग्रंथि काटने वाले दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहां जहां कृष्ण लीलाएं की थी। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्तों के में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं की। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है, किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा पर भ्रम में तलीन होना चाहते हैं। कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्ति की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है, अतः उनके ऐसे कार्यों को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता। जैसे कोई जाता है गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए भौतिक इच्छाओं को लेकर, तो गोवर्धन क्या करते हैं, गिरिराज जी क्या करते हैं, उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के लिए वहां जाते हैं तो बहुत इंतजार करना पड़ता है, तपस्या करनी होती है, नहीं आसानी से गिरिराज जी देते नहीं। लेकिन धाम में प्रवेश करने के लिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि धाम अपराध जो लिखा गया है नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा, उन्होंने बताया है धाम अपराध में, जो पहला धाम अपराध बताया, उन्होंने यही बताया कि गुरुदेव को साधारण व्यक्ति समझना जो कि हमारे हृदय में धाम प्रकट करने वाले हैं, जो धाम को प्रकट करने वाले हैं उन्हीं को ही साधारण व्यक्ति समझ लेना, अनादर करना उनका। तो यह अपराध करके कोई धाम में प्रवेश करता है तो धाम कभी प्रकट नहीं होगा, धाम अपने आप को कभी प्रकट नहीं करेगा। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे, कुछ भग लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी, तो महाराज ने देखा और उनसे कहा अच्छा आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस समय तो महाराज कुछ कहा नहीं। फिर आगे जब जैसे गए, महाराज का इन सब का तभी लाभ है जब गुरु खुश हो, है ना। तो वो तो बेचारे बहुत कष्ट उठा के कर रहे थे, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं है तो दंडवत परिक्रमा का क्या लाभ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें गुरु प्रसन्न नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। भक्ति रंच मात्र भी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है धाम में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए जहां पे इसको कहते हैं प्रभुदाता देश, इसलिए जो गुरु ने हमें सेवा का स्थान दिया उस स्थान में रहकर भजन करना चाहिए, वही स्थान हमारे लिए धाम है, ऐसा सोचते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। और इस तरह से धाम से भिरे जागृत होगा, कृष्ण की लीलाओं से भिरे जागृत होगा, कृष्ण से भिरे जागृत होगा, और ये वास्तव में हमारा जो जरिया है, प्रोसेस है भक्ति में आगे बढ़ाने का भक्तों को, वो तरीका यही है कि फीलिंग इन सेपरेशन, विप्रलंब भाव जिसको कहते हैं उच्चतर अवस्था में, तो ये फीलिंग इन सेपरेशन जो है ये भक्तों को शुरू से ही प्रशिक्षित किया जाता है इसमें। ये धाम से दूर रहो, धाम से दूर रहो, धाम से दूर रहो, बोलेगा क्यों दूर रहो, क्यों दूर रहो, मैं आज जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, इस तरह से क्या है उसके अंदर सेपरेशन बढ़ता रहता है, और उस तरह से हृदय में जेन्युइन अट्रैक्शन डेवलप होता रहता है दूर रहने के कारण। तो इस तरह से आचार्य लोग होते हैं वो प्रशिक्षित करते हैं शिष्यों को, भक्तों को, उनको वास्तव में धाम जाने का अधिकारी बनाते हैं। नहीं तो वो जाएगा भक्त धाम जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा, है ना, कभी कहीं भजन कुटीर बना लेगा फिर वापस आएगा, क्या है, है ना। तो इसलिए इसको चीप ना बनाया जाए, इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि जेन्युइन डेवलपमेंट हो। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए वृंदावन में अगर रहना है तो हमें षट गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए रहना चाहिए, आसान नहीं है धाम में रहना, धामवास सो यहां पर कहा है ना। क्या लिखा है यहां पर, प्रीति तद वसती स्थले, प्रेम धाम से प्रीति हो जाती है, भक्त जो हमेशा धाम में रहना चाहता है या ऐसे स्थान में रहना चाहता है जहां पर हमेशा श्रवण कीर्तन चल रहा हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण चल रहा हो, कृष्ण कथा चल रही हो, वो स्थान भी धाम ही है। तो ऐसे वातावरण में भक्त सदैव रहना चाहता है। तो ये शिला प्रभुपाद ने कहा कि हमारे मंदिर ना बंबई में है, ना न्यूयॉर्क में, ना कैलकाटा में है, हमारे मंदिर का है वैकुंठ में है, और अपने घरों को भी हम वैकुंठ बनाएं, प्रयास करें। तो इस तरह से यहां पर ये बात बताई गई। अभी समय कम है तो आगे का हम लोग थोड़ा सा अगली बार ले सकते हैं, क्योंकि जो अगला जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा और टेक्निकल है। हाँ, इसे बताया कि एक्सटैटिक सिम्टम्स इन न्योफाइट्स और नॉन डिवोटीज, और उसके बाद प्रतिबिंब रति आभास। हाँ, ये जो रति आभास बताया गया है, भाव का आभास, भाव का आभास हमने बता दी, याद है पांचांग भक्ति के द्वारा प्राकृत भक्तों में भी भाव का आभास होता है, पहले हमने चर्चा की थी पांचांग भक्ति का वर्णन करते हुए, तो उस भाव आभास के बारे में या रति आभास के बारे में श्री रूप गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं कि प्राकृत भक्तों में या भक्तों में भी कई बार देखा गया है, और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब और छाया, दो प्रकार के होते हैं। तो इसको अगली बार लिया जा सकता है। तो हमने आज सोचा था कि 9 जो गुण लक्षण है उसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लें, भाव भक्ति के लक्षण, और कहीं गलत फहमी में ना रहें कि हम भाव भक्ति में हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है जो श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है भक्ति रसाम सिंधु में, ये इतना प्रमाणिक है कि कोई भी भक्त इस ग्रंथ को पढ़ के अपने आप को परख सकता है कि वो किस स्टेज में है। इसलिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं नोबडी विल गिव यू सर्टिफिकेट दैट यू हैव बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो खुद ही हमें ग्रंथों को पढ़ना है, और वैष्णव की जब सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग कौन से स्टेज में है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, आखिरी क्या लाइन पूछा आपने? प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, इसी प्रमाणिक संप्रदाय का गुरु होना चाहिए। और कोई प्रश्न है? भगवान के अनंत कोटि गुण है, लेकिन कम से कम 64 गुण तो जान लें, ठीक है। और कोई प्रश्न? एड फर्स्ट हाँ, जब तक हम बच्चे रहते हैं तब तक हम चाहते हैं कि कोई केयर करे हमारा, बट बट यू आर ग्रोन अप देन यू शुड टेक केयर ऑफ डिवोटीज। और गुरु चाहते हैं कि हम लोग सब बड़े हों, बच्चे ना रहें सिर्फ। कब तक बच्चे रहेंगे? क्या आपके घर वाले मतलब ये चाहते हैं कि आप हमेशा बच्चे रहें? वो भी चाहते हैं कि आप बड़े हों, पढ़ें, कमाएं और फिर धन भी लेकर आए, either by cash or by check। तो इसी तरह से भक्त जो है वो बच्चे रहे ठीक है, लेकिन उनको बड़ा भी होना चाहिए, और बड़े होकर उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जिस तरह से घर में जिम्मेदारी उठाते हैं, कोई बड़ा होता है घर में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है घर में, इसी तरह से जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो जब बड़े हो रहे हैं, सीनियर हो रहे हैं, तो उनको अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हम हमेशा क्यों सोचते रहे कि हमारा केयर कोई नहीं कर रहा है, हमें पर्सनल केयर कोई नहीं कर रहा है, ना हमारा कोई चिंता नहीं कर रहा है, हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा है, ये कब तक हम सोचेंगे? बल्कि हम ये सोचें कि हम क्या ख्याल रख रहे हैं दूसरों का। हमने किसी का ख्याल ही नहीं रखा, क्यों हमारा कोई ख्याल रखेगा? बड़े होने पर इस प्रकार की चिंता होनी चाहिए। पूरा जीवन बचपन में थोड़ा बिताना है। और
बड़ा किसको बोलेंगे? भक्ति में या
बड़ा वो है जो जिम्मेदारी लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज। क्योंकि इसी से भक्ति आगे बढ़ेगी, गुरु इसी से प्रसन्न होंगे। आज गुरु का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए भक्तों को, कब तक वो करेंगे? एक साधारण सी बात है, क्या हमेशा हम लोग बच्चे की तरह हरकत करेंगे? या तो एक किताब में जो भाव भक्ति की बातें हैं, ये सब किताबों में रह जाएंगी, फिर पता नहीं कितने करोड़ों जन लग जाएंगे इस स्तर पर पहुंचने पर, भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचने, अगर ये हालत रही तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना, कष्ट होगा इसमें, तपस्या है, आसान नहीं है, शरणागत होना बहुत कठिन कार्य है, खासकर कलयुग में तो और भी कठिन है, लेकिन इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। इसलिए सेवा जब आती है, सेवा जब मौका मिलता है तो आगे आना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और खासकर जब गुरु चाहते हैं उस समय तैयार रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर सहयोग देंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी हमें। और कुछ
आपने बताया कि यश कमाने की जो इच्छा होती है बहुत छोटी होती है और काफी खतरनाक होती है, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है कि कभी जैसे आपने बताया लोग सम्मान देते हैं तो किस तरह से इस भाव को
वापस दे दीजिए। यश गान जब हो रहा है, कोई आपका गुणगान कर रहा है तो आप उनका भी गुणगान करिए। ये ना ही यश की बात है, कोई कुछ भी देता है तो वापस दीजिए, नहीं तो बंधन में फंस जाएंगे आप। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ये नहीं कि लेते रहें केवल, है ना, प्रतिगृणाति प्रसाद ले रहे हैं, देते रहो, लेते रहें हम, देना भी है। भगवत सेवा के लिए लीजिए और दीजिए समाज को, कृष्ण भावनामृत का ये दिव्य ज्ञान दीजिए। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं दुकान से तो पैसा देते हैं नहीं, और नहीं देंगे तो क्या होगा, बोलेंगे कर्जा चुकाया नहीं अभी तक, कितने साल से कर्जा है। कर्जा का मतलब है दोबारा शरीर, है ना, दोबारा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा वो कर्जा चुकाने के लिए। तो इसी तरह से मान हो या अपमान हो, अपमान की अवस्था में वापस नहीं करना है, लेकिन मान की अवस्था में निश्चित रूप से वापस करना है। यानी कि उसे अपमान के ये भी वापस देता हूं मैं, हाँ? तो ऐसा नहीं, नहीं, कोई भी व्यापार जो होता है वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, तब मजाक नहीं होगा। गुरु साधु शास्त्र प्रमाणित करें। ये सब प्रमाणिक तौर से होना चाहिए। अब वो भी ज्यादा ठीक नहीं है, हमने पहले ही बताया कई बार कि हमने भगवान का गुणगान करना है। भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में बोध कराते हैं, जब भक्त मिलते हैं मेरे बारे में बोध कराते हैं, ये नहीं कि एक ही दूसरे के बारे में बोध कराते जा रहे हैं बस, है ना। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ आप मेरी तारीफ करो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ आप मेरी तारीफ करो, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, ये नहीं है, तो मेटीरियल कॉन्शियसनेस है। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ये है कि हम लोग अगर भक्तों का संग कर रहे हैं तो कृष्णा मस्ट बी इन द सेंटर, वैष्णव मस्ट बी इन द सेंटर, वो ज्यादा सेफर। हाँ, कभी किसी का जैसे जन्मदिन आ रहा है तो वैष्णव समाज में हम लोग इम्पर्सनल नहीं है तो उस समय थोड़ा ग्लोरिफिकेशन किया जा सकता है, जेन्युइन, एग्जैगरेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ जोक, इट शुड नॉट बिकम चीप, जो चीज नहीं है उनमें वो भी बता रहे हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड लाइक ब्लफिंग। तो इसलिए जो जेन्युइन है ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हम लोग सेवा के द्वारा हम लोग भक्तों को प्रसन्न करें, दैट इज रियल अप्रिसिएशन। हाँ, जो चल नहीं सकते हैं कुछ तो कर रहे हैं वो, है ना। राधा कुंड में स्नान करने से पहले गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, गुरु आज्ञा दें तो स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए है शास्त्रों में दिया है, स्नान करने के लिए कहा गया है, लेकिन गुरु से आज्ञा लेकर वैसे नहीं। हाँ, वो स्नान नहीं है लेकिन वो आचमन है। और कुछ कोई टॉपिक से रिलेटेड बात है, ये तो कुछ और बात हो रही है। Therefore, one is suggested to stay in the association of advanced devotees. ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसका। भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, उन्नत भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहेंगे तभी। इनका प्रश्न समझे आप ना, कि प्रारंभिक अवस्था में भी जो है कई भक्त लोग जो है उन दूर सजेस्ट किया जाता है कि वो विषय वस्तुओं से दूर रहें, लेकिन व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि कई लोग आप में से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं, बाहर रहते हैं, तो वहाँ तो बचा नहीं जा सकता, है ना। होपलेस केस हो जाता है कई बार, है ना। माया के साथ जैसे आप रोज खेल रहे हैं, माया का अटैक डेली हो रहा है। टफ लाइफ है ना, आउटसाइड लाइफ इज वेरी टफ लाइफ। ऐसा लगता है सर के ऊपर किसी ने तलवार रखी हुई है, कितनी पीड़ा हो रही है, और आप सब देख भी रहे हैं, आकर्षण भी बहुत है, फिर भी भक्ति करना है। तो इसके लिए कई ऐसी चीजें हैं जिनका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने हमें कहा है कि प्रातःकाल प्रयास करें, जल्दी उठें। प्रातःकाल में अगर हम सही साधना करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के समय गुरु अष्टकम का पाठ करेंगे, नरसिंह आरती करेंगे, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है पैकेज प्रोग्राम दिया हमें, वो सबके लिए है, ऐसा नहीं मंदिर में भक्तों के लिए, वो सबके लिए है। प्रभुपाद चाहते सब लोग उसका पालन करें कहीं भी रहें, और साथ में हरिनाम बड़े ध्यानपूर्वक लें प्रातःकाल में। शुरू में कष्ट जरूर होगा, क्योंकि पूरे दिन आपको आराम तो मिलेगा नहीं, ऑफिस में जाएंगे तो, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कवच की आवश्यकता है। युद्ध भूमि में जाते से पहले आपको कवच पहन के जाना है, हरि नाम का कवच, नरसिंह कवच, और भक्तों का कवच, श्रीमद् भागवत का कवच, तुलसी महारानी का कवच, ये सारा कवच जब पहन के जाएंगे आप, तो माया का सामना कर पाएंगे, और शक्ति से आकर्षण रहेगा लेकिन कदम नहीं उठाएंगे, ये अंतर है। जो साधन भक्ति के अंग हैं उनका अगर हम पालन करते हैं तो माया का प्रभाव होगा भी, आकर्षण तो होगा, लेकिन आप उस पर कार्य नहीं करेंगे, यू विल नॉट एक्ट। अट्रैक्शन होने पर भी एक्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो साधना जो है आपकी प्रातःकाल का कार्यक्रम जो है आपको शक्ति देगा कि आप पीछे हट जाएंगे, नहीं ये मैं गलत कर रहा हूं, ये फायदा है। कब कर लेंगे तो प्रारंभ में कब कर पाते हैं साधना के कारण, और निरंतर प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, जितना भी समय मिले कोई स्टैंडर्ड बनाइए, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए, इंटेलिजेंस को शार्प करें हम लोग, इस तरह से हम लोग बच पाएंगे, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। और जब भी मौका मिले भक्तों का संग करें, वीकेंड्स में जैसे आप आज आए प्रोग्राम में, संडे को प्रोग्राम में आए, मंदिर में आए, दर्शन करें, श्रवण करें भागवत का, सेवा करें, तो इस तरह से अपना स्पिरिचुअल जो डोज है, जो उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, इससे इंडाइजेशन नहीं होगा। ज्यादा श्रवण करने से, ज्यादा कीर्तन करने से इंडाइजेशन नहीं होता है, बल्कि और कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होगा हमारा। या फिर डर लगता है कि ज्यादा पढ़ लेंगे, ज्यादा कॉन्शियसनेस, ज्यादा श्रवण कर लेंगे, ज्यादा दर्शन कर लेंगे राधा पार्षद जी का, कुछ हो ना जाए मुझे, है ना। 10 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं करना, जल्दी आ जाना, है ना। तो इस प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं मां शुचा डरो मत, आओ दर्शन करने आओ, करते रहो दर्शन, मेरे सामने ही खड़े रहो। ये आप प्रसाद के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतें और ध्यानपूर्वक ग्रहण करें, ठीक है ना।
आपने बताया कि गुरु अष्टम का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर किसी वैसे मॉर्निंग में जैसे रात को रीड पढ़े और सुबह नहीं उठ पाए तो उस समय में क्या, अगर 7-8 बजे अगर हम करते हैं तो उसमें पढ़ा जा सकते हैं क्या?
हाँ, लेकिन रोज नहीं, कभी कभी, ठीक है। और कुछ इनका क्वेश्चन है कि वी शुड एसोसिएट विद एडवांस डिवोटी, बट एडवांस डिवोटीज आर ऑलवेज बिजी, सो दैट इज अवर कालत्वम। प्राकृत भक्त जब ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करेगा, आगे आएगा भी, प्राकृत भक्त जब शुद्ध भक्तों का संग करता है तो स्वयं भी वो व्यस्त हो जाता है। उसका भी खाना सोना बंद हो जाता है। साधु संघ का असली अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि हम जाए तत्विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात मतलब अप्रोच करना उनको, और उसके बाद प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना और सेवा करना, यह है साधु संघ का असली अर्थ। हमें प्रश्न करना चाहिए अपने आप से, हम जब मंदिर आते हैं या किसी भक्त से मिलते हैं तो कितने प्रश्न करते हैं हम? क्या हमारे पास कोई प्रश्न होता है या केवल दंडवती करते रहते हैं श्री राम या हरे कृष्णा कहते रहते हैं? वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? प्रणिपात तो हो गया लेकिन उसके बाद प्रश्न नहीं है, कोई सेवा नहीं है, फिर तो उससे क्या है, फिर स्पिरिचुअल लाइफ स्टैग्नेंट हो जाता है। देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी, कॉन्शियस अलोन विल नॉट हेल्प। प्रभुपाद ने शुरू में कहा नेक्टर डिवोशन, कॉन्शियस अलोन विल नॉट हेल्प, देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी, डिवोशनल सर्विस, तभी तो इतना बड़ा मंदिर बनाया। कि अभी जो आज था एक डिस्कशन था इनके NDTV में कि बड़ा मंदिर बना रहे हैं लोग, इसका क्या फायदा है? व्हाई दे आर मेकिंग बिग बिग टेम्पल्स? क्योंकि ज्यादा मरीज है इसलिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं आप? नर्सिंग होम बनाओ ना छोटे छोटे। इतना बड़ा ह्यूज 5-स्टार फैसिलिटी दी हुई आपने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रहे हैं क्योंकि इतने सारे मरीज हैं, उतने डिग्री के मरीज हैं, है ना। इसी तरह से बड़ा मंदिर है कि सबको सेवा का मौका मिल जाए, यहां पर इतनी सेवा का मौका मिले कि कोई खाली ना बैठे, दिन रात चलता रहे, बस परेशान रहे कृष्ण के लिए, एक क्षण भी खाली ना हो। ओ पानी नहीं आ रहा, ओ ये बिजली नहीं आ रहा, ओ ये हो गया, अरे ये क्या हो गया, जाओ जाओ देखो देखो वहां पे गार्ड है कि नहीं, हमेशा परेशान। राघव प्रभु जैसे हैं वो हमेशा भागते रहते हैं इधर, वो ये साधु हृदय प्रभु हमारे पीछे बैठे, है ना। देखने में ऐसा लगता है कि ये लोग एंग्जाइटी में, बट दिस इज स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, क्योंकि ये कृष्ण के लिए परेशान है, कृष्ण की सेवा में परेशान है, तो दिस इज गुड। स्पिरिचुअल एंग्जाइटी बहुत हेल्दी है, मेटेरियल एंग्जाइटी बहुत डेंजरस है। स्पिरिचुअल एंग्जाइटी जिसका जितना ज्यादा है उतना ज्यादा उसका एडवांसमेंट हो रहा है, जितना कम है उतना कम हो रहा है। हमेशा चिंता टेंशन में है हम लोग, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट में, कहीं संकीर्तन गोडाउन में तो ऐसा नहीं हो रहा, हमेशा चिंता कर रहे हैं, एंग्जाइटी में है, जैसे हमारे हमेशा चिंता करते रहते हर एरिया के बारे में। हाँ, प्रभुपाद सेड दिस,
therefore we should always live in
devotees. तो ये प्रभुपाद का कोट है. और इसलिए क्या है कि ये बहुत जरूरी है कि जब हम लोग ऐसे वातावरण में रहेंगे जहां हमें हमेशा परेशान रहना पड़ेगा, है ना, खाली नहीं बैठ सकते. जैसे म्यूजियम में जाते हैं बेचारे भक्त, कोई ना कोई आता रहता है, म्यूजियम दिखाओ, म्यूजियम दिखाओ, म्यूजियम दिखाओ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना. कभी गाइड्स के साथ समस्या है, कभी इसके साथ समस्या है, पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है कृष्णा कॉन्शियस की, और भाग रहे हैं लोग इधर उधर, है ना. प्रॉपर इसलिए कहते हैं टैक्स योर ब्रेन, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, तो टैक्स करना पड़ता है ब्रेन को इस तरह से. तो प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई ऐसी है कि कोई खाली ना बैठ सके. दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजीज एंड क्रेजीज. बहुत तपस्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक तनाव होगा, मन को संयमित रखना पड़ेगा, सहनशील रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा हर परिस्थिति में, और ऐसे भक्ति करते रहना पड़ेगा, अपराधों से बचना होगा, बहुत कुछ है. तो ऐसे अपने आप को कष्ट में डालना है, इसी को तपस्या कहते हैं. और इसका फिर सुख है, आनंद है, उसकी कोई सीमा नहीं. फिर जो आज हम कष्ट उठा लेंगे ना, तो वृद्धावस्था में फिर एक जगह पे बैठकर आप आराम से हरिनाम ले सकेंगे, और वहां बैठे बैठे आपको पता चलेगा कि मंदिर में क्या चल रहा है. कृष्णा कॉन्शियस कितना पावर है, ध्रुव महाराज के कृष्णा कॉन्शियस कितना पावर था बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं वहां पे कि एक जगह खड़े थे लेकिन उनका कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था, और उनका कॉन्शियसनेस इतना हैवी हो गया, वो इतने हैवी हो गए जितना यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स का जो वेट था उतने ही भारी हो गए ध्रुव महाराज. जस्ट बिकॉज ही वॉज कॉन्शियस ऑफ द लॉर्ड, ही बिकेम एज हैवी एज अ यूनिवर्स, और उस कारण से पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिल रहा था. ऐसे बड़े बड़े देवी देवता भी कांप रहे थे, वो सब कांप रहे थे. ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़कर सब लोग क्या हो रहा है, सब सांस नहीं ले पा रहे थे, पूरा यूनिवर्सल ब्रीदिंग चोकअप हो गया. ध्रुव महाराज की कथा में सुनिए आप क्या डिटर्मिनेशन है बाप रे उनका. ओह ब्रह्मा जी का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देवता लोग परेशान है. तो चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है तपस्या कर रहा है ना. तो ये कॉन्शियसनेस स्प्रेड होता है. तो जो श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त आते हैं, शुद्ध भक्त आते हैं, जब वो भजन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, वो तपस्या करते हैं, उनकी जो चेतना है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, पूरे पृथ्वी में फैलती है. जब वो हरिनाम लेते हैं, प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में बैठकर पेड़ के नीचे हरिनाम कीर्तन किया, तो उसका प्रभाव पूरे पृथ्वी में पड़ा, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि प्रभुपाद ने वहां कीर्तन किया, क्योंकि प्रभुपाद ने वृंदावन में भजन किया, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती आचार्य गुरुजनों ने भजन किया. यहां पृथ्वी में आके क्यों भजन करते हैं, क्यों शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो हैं श्रीधाम मायापुर में आके उन्होंने भजन किया, 100 करोड़ नाम लिए उन्होंने 10 साल के लिए एक झोपड़ी बनाकर, बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट. भक्ति सिद्धांत ठाकुर ही चैंटेड 1 बिलियन हाँ 100 करोड़ 1 बिलियन नेम इन 9 years or 10 years. एक झोपड़ी बनाकर, बारिश के दिनों में छतरी रखकर, still he was chanting 3 lakh names every day. Bhaktivinoda Thakur similar, he also did like this. तो ये सब क्यों ऐसे कर रहे थे, यहां आकर क्यों चैंटिंग कर रहे थे इतना, why? So that the whole universe becomes purified. और जो भी जीवात्मा है इनके हरिनाम से, इनके शुद्ध नाम के उच्चारण से, जितने जीव है उन सबको सुकृति मिल गई इनके नामोच्चारण के कारण. इसी कारण से हम लोग आज भक्ति में, हम लोग भक्ति क्यों कर पा रहे हैं, हम लोग भक्ति कैसे शुरू कर पाए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य लोग हैं, इन्होंने आके क्यों यहां भजन किया, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ा, और जितने जीवात्मा है उन सबको सुकृति मिल गई. इसी कारण से, यानी कि वृंदावन में जो बैठे हुए भजन कर रहे हैं, श्रील गोरकृष्णनाथ बाबा जी महाराज इस तरह से नवदीप में, या श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में, या सीधा मायापुर में जो भजन करते थे, तो उसका लाभ हमें मिल रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम प्रचार कर रहे हैं इसलिए सबको लाभ मिल रहा है। हम तो केवल निमित्त, हमें तो सेवा में लगाया जा रहा था कि हम लोग शुद्ध हो जाए, लेकिन असली प्रचार तो उन्होंने करके चले गए, हम तो लाभ उठा रहे हैं उनके प्रचार का। ठीक है, हरे कृष्ण, यहीं विराम देते हैं। भक्ति राम सिंधु की जय, श्री गुरु गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।